नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम छूलो आसमान में आज आपसे रूबरू होंगे एमटीवी एशिया व्यूअर्स चॉइस अवार्ड और यूएस बिलबोर्ड व्यूअर्स चॉइस अवार्ड के विजेता ख्यात गायक एवं संगीतकार श्री लेस्ली लुइस। इनसे बातचीत करेंगे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज एवं इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिटरसेन।
आज हमारे संग है लेस्ली लुइस, नाम तो सबने सुना है, आज उनकी आवाज भी सुन लीजिए। वैसे आवाज भी सुनी होगी पहले, लेकिन आज फिर से एक नए रूप में सुनेंगे। फेमस सिंगर, पायनियर ऑफ डिफरेंट जेनर्स ऑफ म्यूजिक इन इंडिया एंड ओवरसीज। वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो।
थैंक यू विकास जी।
लुइस साहब, लेस्ली लुइस साहब,
बहुत
अब हम आपके लाइफ के बारे में पूछेंगे कुछ।
मेरा लाइफ तो बस म्यूजिक का ही भरा हुआ है।
फिर भी उसमें बहुत जेनर्स है ना, अभी जैसे हमने बताया।
जी,
हमको ये बताइए और हमारे श्रोताओं को बताइए, आपकी अर्ली लाइफ क्या थी? हमने सुना है कि आप बहुत फेमस आदमी के सन है, मिस्टर पीएल राज।
जी, मेरे फादर जो थे उनका नाम था पीएल राज, वो बॉलीवुड में कोरियोग्राफर थे, डांस डायरेक्टर, और बहुत से मूवीज जैसे शोले, सरगम, डॉन, वो जो गाने होते हैं ना, कह के पान बनारस, इवनिंग इन पेरिस, याहू, जंगली।
हमने सुना है कि 1000 फिल्म्स को उन्होंने कोरियोग्राफ करा
बहुत
था।
बहुत बॉलीवुड में
1000 फिल्म्स
बहुत ज्यादा है।
इतने तो बने भी थे क्या फिल्म्स उस टाइम पर?
उस टाइम तो बनते थे अभी भी बनते पर बीइंग हिज सन ऐसा हुआ कि सब लोग कहने लगे कि अच्छा आप तुम भी डांस करोगे डैडी जैसे, और स्कूल में जबरदस्ती, मतलब जैसे कि हम काले हुए तो क्या हुआ दिलवाले, वो उनका गाना था, तो मुझे भी बूट पॉलिश फेस पे लगा के लुंगी पहना के स्कूल में नचवाते थे स्टेज पे, एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। हाँ, मतलब ये क्या है, मतलब योर फादर इज पीएल राज तो आपको नाचना ही है। तो मैंने सोचा कि मुझे नाच गाना नहीं करना, मुझे नाचना नहीं, मैं गाऊंगा जो भी है, म्यूजिक करूंगा। तो वहाँ ही स्कूल में, जब मैं माउंट आबू में था, सेंट पेरीज माउंट आबू स्कूल है, वहाँ मैं बोर्डिंग स्कूल में था, वहाँ मैंने गिटार मतलब सीखना शुरू किया, और वही एक इंस्ट्रूमेंट था जो मुझे मेरे डैडी से अलग कर दिया, ताकि वो डांस में नहीं हो, म्यूजिक में हो।
तब कोरियोग्राफर क्यों नहीं बने?
तो वही तो हुआ ना, सब लोग कहते थे कि अच्छा तुम तो डैडी,
नेचुरल स्टेप था वो।
हाँ, क्योंकि लोग कहते थे ना तुम डैडी जैसे डांस, मैंने डैडी जैसा नहीं करूंगा, मैं अपना करूंगा, तो वो अपना करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ।
कोई खास गाना आपको म्यूजिक बताना है, कोई खास गाना सुनना है, कि हम तो बीच बीच में गाने भी सुनाते हैं।
मेरे जो फेमस गाने आप सुना सकते हैं, अगर
खुद के
जैसे, और मैंने बहुत से गाने कंपोज किए हैं इंडिया के लिए, जो जैसे परी हूँ मैं, तो आप परी हूँ मैं सुना सकते सबको।
ये बताइए, आपने अभी अभी स्कूल के बारे में मेंशन करा, तो आपके अर्ली लाइफ क्या थी? स्कूल, कॉलेज, क्या टाइप के स्टूडेंट थे?
मैं तो स्टूडेंट अब तक हूँ लाइफ का, लेकिन जब स्कूल खत्म किया तो बॉम्बे जब आया तो ऑब्वियसली मेरे डैडी ने बोला कि तुम कॉलेज ज्वाइन करोगे, तो मैंने सोचा मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो म्यूजिक करना है. तो उनके आंखों में,
कॉलेज गए नहीं क्या?
हाँ, आंखों में उनके धूल डालने के लिए मैं केटरिंग कॉलेज ज्वाइन किया.
अरे रे रे.
मेरा एक दोस्त था नौशर मोदी करके, जो केटरिंग कॉलेज में था, तो मैं उस कॉलेज में शामिल हो गया कुकरी कोर्स में. मेरे फादर को लगा कि चलो कॉलेज जा रहा है,
कुछ तो कर रहे हैं.
हाँ, कॉलेज, केटरिंग कॉलेज. तो वहाँ उनको ऐसे ही उल्लू बनाने के लिए कॉलेज में गया.
अभी नहीं है इसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं.
हाँ, लेकिन सही बात. हाँ. तो वही है ना, अभी आप सही पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ. और रात को जब कुलावा में एक स्लिप डिस्क करके एक डिस्कोटेक होता था,
याद है मुझे,
वहाँ में जाके परफॉर्म करता था.
हाँ.
तो दिन में कॉलेज और रात में ये नाइट क्लब में परफॉर्म करके, वहाँ 1 बजे का रात का एक बस होता जो माहिम जाता था, वो बस पकड़ के मैं घर पहुँचता था, सुबह वापस कॉलेज, वहाँ के बाद फिर कुलावा.
आपकी खास बात एक है जो हमारे ध्यान में आई है, आप म्यूजिशियन तो है ही, लेकिन आप अलग अलग जानर के म्यूजिक करें. आपने ऑलरेडी 4 नए जानर इन्वेंट करे हैं. हाँ, और आगे भी है ना कुछ ऐसी बातें चल रही हैं हम सुन रहे हैं.
इंडिया में मैंने देखा कि बहुत सा म्यूजिक है, लेकिन बहुत सा म्यूजिक जो नहीं था, वो मुझे लगा कि मुझे भी एक ऐसा टाइप का म्यूजिक करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है. तो वहां से इंडी पॉप शुरू हुआ, जो मैंने परी हूं मैं, यारो दोस्ती, यारों दोस्ती, वो गाने, हम रहे या ना रहे कल, और सानी दा पमगा मगा रिसा कृष्णा नी बेगने. तो बहुत से गाने मैंने कंपोज किए जो इंडी पॉप बन गया. तो एक जॉनर वहाँ शुरू,
इंडी पॉप आपने शुरू करा था
जी. उसके मतलब सामने सामने पहले पहले जो लोग थे वो मैं था. उसके बाद बॉलीवुड की जो रिमिक्सेस मैंने आशा जी के साथ स्टार्ट किया था, वो एल्बम का नाम था राहुल एंड आई. तो पिया तू अब तो आजा, ओ मेरे सोना रे सोना, वो पूरे जो गाने किए थे. वो एक्चुअली क्या हुआ था कि आर डी बर्मन खुद, उन्होंने आशा जी से कहा था कि मेरे पुराने गाने मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेस्ली के साथ करना है, एक मॉडर्न स्टाइल में. और जब तक उनका देहांत हुआ, तो आशा जी मुझे लंदन में मिली थी, सेल्फ्रिजेस में कुछ शॉपिंग कर रहा था, तो आशा जी मिली, बोला
आपको भी एक बार मिली थी लंदन में.
हाँ, वो तो आशा जी
तो नहीं, लेकिन कोई एक मॉल में.
हाँ, तो मुझे वहाँ मिली और कही कि आर डी बर्मन ऐसे कह रहे थे तुम्हारे बारे में, तो तुम वो एल्बम करोगे? तो ऑब्वियसली मैं तो उनका फैन हूँ. तो बॉलीवुड रिमिक्सेस वहाँ से शुरू हुआ. तो बहुत से गाने जैसे भीगी भीगी रातों में, वो सब हाय रे हाय तेरा घूंटा, सब मैंने किए. हाँ जी, मेरे किए हैं. तो बॉलीवुड रिमिक्सेस मैंने वहाँ से शुरू किए. उसके तो सेकंड जॉनर हुआ. थर्ड जॉनर हुआ कि इंडियन क्लासिकल फ्यूजन. तो हरिहरन और मैं, हम दोनों साथ में मिलके कॉलोनियल कजिन्स करके
बहुत फेमस था.
तो कृष्णा नी बेगने बारू, वो वाला सानी द बम गम ग, आई एम द वन दैट्स क्रेजी अबाउट यू, ओ हो काय झालं, आई एम द वन. सो वो सब गाने वो कॉलोनियल कजिन्स में हमने किए थे.
तो अभी एक गाना सुनेंगे, ये खुद गाएंगे अभी. एक गाना सुन,
मैं ऐसे ही गा लूं?
हां ऐसे ही गाओ.
कौन सा गाऊं?
जो भी आपके मन में है.
I'm the one that's crazy about you, oh, काय झालं, I'm the one so hazy without you, oh, काय झालं, देख के तुझको दिलिए बोला, तू है शबनम मैं हूँ शोला, देख के तुझको दिलिए बोला, तू है शबनम मैं हूँ शोला, oh, काय झालं, काय पाऊण, oh, काय झालं.
Very good, that's wonderful.
काय झालं without music.
Then a tape music, we get the original.
है तेरे मुझको दीवाना करे,
ये शराबी आंखें तेरी मुझको मस्ताना करे।
देखने वाले तुझे देखे तो बस देखा करे, देखने वाले तुझे देखे तो बस देखा करे।
Hey, I'm the one that's crazy about you.
ये बोला तू है शबनम मैं हूँ शोला, देख तुझको दिल ये बोला तू है शबनम मैं हूँ शोला।
उसके बाद हाँ। वो तीन हो गए जैसे कि इंडी पॉप, बॉलीवुड रिमिक्स और क्लासिकल फ्यूजन।
ओके,
और चौथा जो मैंने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया इंडिया में।
कोक स्टूडियो,
तो कोक स्टूडियो
COKE,
हाँ COKE। तो कोक स्टूडियो में जैसे कि कैलाश खैर, सुनिधि चांद, के शंकर महादेव, सबको लेके और इंडिया का जो फोक म्यूजिक है उसको मिक्स करके मैंने कोक स्टूडियो स्टार्ट किया। तो वो अभी ये यंग जनरेशन में बहुत पॉपुलर है,
अभी भी
बहुत पॉपुलर।
एक अब शुरू करें आप,
7 साल 8 साल 7 साल
काफी टाइम हो गया।
हाँ, तो अभी टाइम है कि अब और कुछ करूं। तो वो अब आएगा, वो नया म्यूजिक, मैं उसको ग्लोबल हिंदी करके कहता हूँ।
ग्लोबल हिंदी
जी, क्योंकि म्यूजिक टोटली ग्लोबल है, रॉक हो, ब्लूज हो, या इंडियन क्लासिकल हो, फोक हो, जो भी हो, म्यूजिक ग्लोबल है और वो हिंदी में है, लेकिन जैसे मैं गाता हूँ वो इंडियन नहीं लगता, ग्लोबल लगता।
बताएंगे हमको कुछ?
वो कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, जब रिलीज होगा तो मैं
मतलब ये देखिए ये तो सीक्रेट रख रहे हैं, बता रहे नहीं अपने को। चलिए हम आपको वापस ले आएंगे जब रिलीज होएगा
जी।
तो ये जानर ऑफ म्यूजिक, हम तो म्यूजिशियन है नहीं, नॉर्मली हमारा जो ये प्रोग्राम रहता है वो बिजनेसमैन का रहता है, बोरिंग बिजनेसमैन नहीं बोलूंगा
जी जी,
बस इम्पोर्टेंट और अच्छे लोग।
मुझे लगता है कि बिजनेसमैन भी बहुत कलाकार ही होते हैं, उनको भी एक स्ट्रेटजी कैसा करना, कैसे प्ले करना, कैसे,
वो अपनी अलग कला है।
हाँ, वो अलग कला है और वो एज टैलेंटेड है मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि म्यूजिशियन, ठीक है म्यूजिक के हिसाब में ज्यादा, और बिजनेसमैन ऑब्वियसली बिजनेस के हिसाब में।
तो कब रिलीज हो रहा है आपका नया जॉनर?
तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन लाए, और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे लेजली लुइस करके, तो पहला गाना ऑलरेडी आया हुआ है, उसका नाम है पैसे की माँ की आंख।
पैसे की माँ की आंख,
ऑलरेडी 1 मिलियन व्यूज हो चुके
हैं। मिलियन
1 मिलियन हो गए।
वाओ,
तो ऐसे हम गाने थोड़े थोड़े रिलीज करेंगे और देखते हैं लोगों कैसा अच्छा लगता है।
तो हम वेट कर रहे हैं,
यूट्यूब पे जाएंगे
ऑलरेडी है।
हाँ, यूट्यूब पे है पैसे की माँ की आंख,
आज ही जाएंगे, कल तक तो चले ही जाएंगे उस पे। ये तो हुआ आपका म्यूजिक का
जी।
आपकी राय में हमको ये बताइए कि ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है ऑफ इंडिया
जी,
म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या इसमें हेल्प करने के लिए,
नहीं,
या सपोर्ट करने के लिए?
डेफिनेटली गवर्नमेंट करती है, जैसे CII
वो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है।
हाँ, हाँ, तो उसके गवर्नमेंट का एक सेक्शन है जहाँ उनके जो आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट को बाहर भेजते हैं।
ओके,
ताकि कल्चर हमारा वहाँ लेके जाए और वहाँ के जो आर्टिस्ट है उनको यहाँ एक्सचेंज में ले आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया गवर्नमेंट कुछ कम कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, स्पेशली मुझे लगता है कि फोक म्यूजिक हो वो हमारा म्यूजिक है, एक तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है हमारा है, फोक हमारा है, बाकी का जो वेस्टर्न जो म्यूजिक है हमने इंपोर्ट किया हुआ है, अपना बना लिया है। तो जैसे ईना मीना डी का डायडामनिका वो इंडियन नहीं है,
नहीं है,
नहीं, वो रॉक एंड रोल है, बिग बैंड है, वेस्टर्न म्यूजिक है, उसको लेके हिंदी में अपना कर लिया है। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में जब मैं छोटा लड़का था उस जिंगल में भी मैंने कुछ काम किया है, तो वो उस टाइम में मुझे फोक बहुत इंटरेस्ट था। अब अगर परी हूं मैं सुनोगे तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ फोक टाइप का म्यूजिक भी है, और वो इंटरेस्ट मुझे फोक का हुआ ऑल इंडिया रेडियो से, क्योंकि मेरे फादर जब शूटिंग नहीं करते थे घर पे रहते थे तो 2 बजे एक ऑल इंडिया रेडियो का फोक प्रोग्राम आता था और वो रेडियो पे वो ऑन करते थे, और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, और मैंने बहुत ढूंढा, बहुत साल फोक म्यूजिक ढूंढा, इंडिया में नहीं मिल रहा है, और सब रिकॉर्ड स्टोर में जाके देखा तो फोक म्यूजिक नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पे प्ले हो रहा है। अभी आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्योंकि किसी ने रिकॉर्ड किया, लेकिन जो ऑल इंडिया रेडियो के पास जो एक खजाना पड़ा हुआ है ना, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज पब्लिक ओपन कर लो, बेचो जो भी है, ताकि ये जनरेशन समझे कि हमारे पास क्या फोक है। सिर्फ कोक स्टूडियो करके फोक नहीं बनता।
सीन है ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो राजदार। जिसको तुझसे हो प्यार कोई तो दिल भर हो यार, तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो राजदार। जिसकी वफा तेरे लिए हो, अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है कोई तो दिल भर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार कोई तो दिल भर हो यार।
ये बताइए अभी इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, क्या वर्ल्ड को अभी भी पता है कि इंडिया में म्यूजिक होता है?
100% हॉलीवुड भी देखेंगे तो जैसे रहमान ने ऑस्कर उसको विन किया है और स्लमडॉग मिलियनेयर बहुत चला एज एन इंडियन फिल्म, है नहीं इंडियन लेकिन वो इंडिया डिपिक्ट किया है
अपने म्यूजिक पार्ट।
म्यूजिक मुझे लगता है कि पहले से जैसे रविशंकर जी रहते थे, अल्लाह रखा खान साहब रहते थे सब उस टाइम जब उन्होंने वुडस्टॉक करके उनका जो एक फेस्टिवल था या बहुत से वेस्टर्न फेस्टिवल्स में और बीटल्स में, बीटल्स को जो इंडियन म्यूजिक में इंटरेस्ट थी जैसे जॉर्ज हैरिसन को सितार बजाना बहुत अच्छा लगता था,
यहाँ के
रह के सीख के, तो उन्होंने इंडियन कल्चर बहुत ऐसे स्प्रेड किया है। और उसके बाद में जैसे अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट खुद ने शोज करते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस, आप जब सीजन होता है वेस्ट में समझे जून जुलाई अगस्त सितंबर, वो बहुत वर्ल्ड में घूम यूरोप में होता है और अमेरिका में होता है, तो इंडियन म्यूजिक इज ऑल ओवर द वर्ल्ड।
आज के दिन आज का करंट म्यूजिक कहीं भी रिवर्बरेट करता है क्या?
मुझे लगता है कि बॉलीवुड म्यूजिक बहुत रिवर्बरेट करता है,
इंडियंस में ही
नहीं वेस्टर्न में भी,
वेस्टर्न में
उनको
भी
अच्छा लगता है। अभी मैंने कोई टीवी पे देखा उनका जो एक टीवी था जो एक बॉलीवुड का गाना और एक इंग्लिश गाना उन्होंने मिक्स करके वो परफॉर्म कर रहे हैं और डांसर्स भी पूरे इंडियन गोरे वहाँ के जो लोग हैं इंडियन कॉस्ट्यूम में डांस कर रहे हैं और इंडियन स्टाइल कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन उनका एक अलग।
आजकल हम सुन रहे हैं कि मतलब ये अमेरिकन्स यूरोपियंस ये यहाँ पे मूवीज में बहुत आ रहे हैं, म्यूजिक में भी आ रहे हैं क्या वहाँ से? कुछ मैंने सुना है एक दो जन, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, वो यहाँ पे आके इंडियन पॉप करते हैं,
नहीं बहुत से
इंडियन यूरोपियन म्यूजिक कर रहे हैं।
हाँ, बहुत से लोगों को इंडिया अभी ज्यादा लुक्रेटिव लग रहा है कि यहाँ काम है,
पैसा है,
यहाँ पैसा है। देखेंगे इतने फॉरेनर्स यहाँ रहते हैं, अभी इतने रेस्टोरेंट शुरू हुए है, म्यूजिक शुरू हुआ है, और जितना आप यूरोप में और अमेरिका में जाओगे आपको लगेगा कि इतना वहाँ कंपटीशन है कि उनको काम नहीं मिलता है। और इंडिया ऑब्वियसली गोरे लोग हैं, हम लोग सोचते कि गोरे हैं तो बेटर
हो गया है, म्यूजिक का काम का फिल्म्स का इतना पैसा आते जा रहा है
जी,
तो वहाँ से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया 100%।
अभी आप इतने फॉरेन फिल्म देखेंगे जहाँ की डीओपी जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी फॉरेनर होगा या कोई स्टंटमैन फॉरेनर होगा, तो बहुत से फॉरेन के टीम्स भी यूज करते हैं क्योंकि उनके पास कला भी है, ऐसे नहीं कि नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उनके पास नहीं है, तो जो जब किसी को कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो वो मिक्स करते हैं। जैसे कि मैंने डिज्नी का जो फर्स्ट म्यूजिकल इंडिया में जो किया है ब्यूटी एंड द बीस्ट, उसका पूरा म्यूजिक मैंने किया है, लेकिन वो पूरा फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक है और इंडिया में ऐसा ऑर्केस्ट्रा है नहीं जो बजा सकता है, तो मैंने पूरे प्राग में चेकोस्लोवाकिया में उसको पूरा रिकॉर्ड किया एक फिलहार्मोनिक के साथ, जो सिटी ऑफ प्राग फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने रिकॉर्ड किया।
अभी जो आप गए थे प्राग वहीं गए थे, इसी के लिए गए थे या पहले की बात?
अभी जो मैं गया था मेरे शो के लिए गया था, लेकिन मैंने पहले प्राग में ये रिकॉर्ड किया हुआ है ब्यूटी एंड द बीस्ट का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि वहाँ हम उस टाइप का म्यूजिक यहाँ इजीली नहीं बजता है, तो इसीलिए हमको भी वहाँ का सहायता लेना पड़ता है।
आजकल क्या है ना, ये सोशल मीडिया में सब सबको सब पता है
जी,
हम तो आपको देख रहे हैं, लास्ट 15 दिन से घूम रहे हैं प्राग,
ज्यूरिख प्राग, वो तो हमारा शो है। मेरा जो शो है लेस्ली लुईस लाइव, वो हम 3 तरीके से करते हैं, एक बड़ा शो है उसको कहते हैं बॉलीवुड बादशाह, एक दूसरा शो है उसको कहते हैं रॉक एंड रोल बैंड, और एक तीसरा शो है जिसे हम कहते हैं डुओ, जैसे कि ड्यूएट, हम दो लोग हैं, एक लड़की है काव्या करके मेरे साथ गाती है और और मैं गाता हूँ, तो हम मेरा शो है 3 टाइप्स के अलग अलग शो है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि प्राग में और ज्यूरिख में घूम रहे आप देख रहे हैं, वो हमारा डुओ वाला सेट था।
एक और बात हम जानना चाहेंगे आपसे
जी,
देखो 2000 जमाना आ गया, 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया, बच के रहना दीवाना हूँ मैं, देखो 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया, बच के रहना दीवाना हूँ मैं, देखो 2000 जमाना आ गया, मिलके जीने का बहाना आ गया है।
होंगी नई बातें, सोचो क्या होंगी रातें। सोचो क्या होंगी रातें, पहले जो न की हो होंगी वो मुलाकातें। जो चला गया भूल जा क्या किसी से गिला, जो चला गया भूल जा क्या किसी से गिला। तेरे नजर का निशाना हूँ मैं, देखो 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया। खुल के सब करेंगे हम ना अब डरेंगे, खुल के सब करेंगे हम ना अब डरेंगे। दुश्मन से लड़ेंगे, हसीनों पे मरेंगे। कोई तो कहे बेवफा कोई तो दिलरुबा, कोई तो कहे बेवफा कोई तो दिलरुबा, पर मैं हूँ सयाना हूँ मैं, हाँ दीवाना हूँ मैं। उ, उ, देखो 2000 जमाना आ गया, देखो 2000 जमाना आ गया। मिलके जीने का बहाना आ गया, बच के रहना दीवाना हूँ मैं।
एकेडमिकली यहाँ पर म्यूजिकल एकेडमीज हैं क्या, अच्छे हैं क्या कोई, हमने तो सुना नहीं कभी भी।
पहले एकेडमीज नहीं थे ज्यादा, जो थे बहुत कम थे और इंडियन म्यूजिक के लिए ज्यादा थे। अभी वेस्टर्न म्यूजिक के लिए जैसे रहमान ने चेन्नई में किया है स्वर्णभूमि एकेडमी, वहाँ एक है, और बर्कली जो अमेरिका की एक एकेडमी है वो खुद आके यहाँ है, उन्होंने ट्रू म्यूजिक ट्रू स्कूल ऑफ म्यूजिक के साथ ज्वाइन किया है। तो बहुत से नए नए एकेडमी शुरू हुए हैं, अच्छे हैं या नहीं है
ये तो टाइम विल टेल,
वो टाइम विल टेल।
पहले तो हम यही सुनते थे कि इंडिया में तो घराना रहते हैं
जी,
तो लोग जाके एक घराना से लग जाते हैं
जी,
पूरे जिंदगी वही करते रहते हैं
जी।
बट ये मॉडर्न स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ है, घराना अभी भी चलते हैं?
मुझे लगता है EMI का जैसा स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि पहले जब गाड़ी वाला था तो पता है उसके पास पैसे थे, गाड़ी है, घर है, बंगला है, तो उसके पास पैसे हैं। अभी वो नहीं है, हो सके उसके पास पैसे नहीं है लेकिन लोन पे है, घर है, गाड़ी है। तो वो जो चेंज हुआ इंडिया में, मुझे लगता है म्यूजिक में भी वही हुआ कि लोग अपना इतना वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, कि उनको बहुत जैसे फास्ट फूड उनको चाहिए, तो फटाफट मुझे 3 महीने ये घराना के पास सीखना है, फिर 4 महीने मैंने इसके पास, तो उसमें तो कोई लर्निंग नहीं है। लेकिन उनका CV पे जब पेपर पे आता है कि आई हैव इनके साथ मैंने सीखा है तीन, तो बोलेंगे नहीं कि 3 महीने इनके साथ सीखा है, उनके साथ सीखा है, तो सबको लगता कि बहुत सीखा हुआ है। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं कि सबको मोबाइल बिल भरना है, सबको अपना रेंट देना है, सबको पैसे की पड़ी है, तो पैसे की मां की आंख।
यही हो गया इंडिया में, मनी फर्स्ट, जैसा पहले बोलते थे ना कि पैसा पहले भगवान पीछे, ऐसा कुछ आजकल हो गया इंडिया में।
मैं उसे कलयुग कहता हूँ।
कलयुग तो मत बोलिए,
मतलब वही वही
तो बहुत लंबा रास्ता निकलना
है। वो तो जाएगा ना, घूम फिर के सतयुग तो आना ही है।
ओके,
तो मेरा कहना है कि जो हो रहा है अब हर बिजनेस में, ये हो रहा है हर कला हर जोन में, आप देखोगे कि जो होता था वो अब नहीं हो रहा है, लेकिन वो होने से आगे ही जाने वाला है।
अभी आप तो बन गए हैं एक म्यूजिकल लेजेंड ये कंट्री में, आप ये यंगस्टर्स को क्या राय देंगे आज जो आना चाह रहे हैं
जी,
क्या करना चाहिए उनको? सिर्फ वेस्टर्न करना चाहिए, थोड़ा इंडियन को मिक्स करना चाहिए, कोई घराने में जाना चाहिए, कोई एकेडमी में जाना चाहिए? बहुत क्वेश्चंस हैं ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं न्यू, उनको दे आर अनक्लियर कि हमको किस तरीके से म्यूजिक में एंटर,
और उनके पास बहुत ऑप्शंस है अब,
यही तो क्या करें वो,
तो अभी
आपकी राय क्या है?
मेरा कहना है कि कोई गारंटी आंसर नहीं है कि आप ये करोगे तो वो होगा, लेकिन एक चीज मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि हमारे टाइम में टैलेंट बहुत जरूरी थी, और अगर आदमी टैलेंटेड था तो उसको आगे जाने का चांस था। आज वो नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट है तो वो उतना नहीं चलेगा, सिर्फ टैलेंट नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से नेक्स्ट जनरेशन की जो आर्टिस्ट है वो आप उनको देखेंगे तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास एक चीज मुझे लगता है कम है, वो जुनून। वो जुनून होगा, टैलेंट तो होना ही है, जुनून होगा तो आगे जाओगे, नहीं तो आप मिक्स में मर जाओगे।
तो ये यंगस्टर्स को क्या इंस्टेंट फेम चाहिए?
सबको वही है ना, तो उनको ऑलरेडी 20-25 साल में उनको सीईओ बनना है।
हाँ,
आप समझते हैं क्या
हमारे बिजनेस में तो
नहीं है होता। आज एक जॉब आपके टाइम में जब एक आदमी एक कंपनी में काम करता था 20 साल का, अरे उसको बहुत कर देंगे, बहुत वफादार आदमी है। अभी 20 साल तो कोई काम ही नहीं करेगा, दो साल यहाँ एक साल वहाँ, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा है कि मेरा करियर आगे जा रहा है, तो पूरा सब चेंज हुआ है। और सेम वे म्यूजिक में भी लोग एक जगह ज्यादा रुकना नहीं चाहते, अगर पैसा आ रहा है तो रुकेंगे, उसके अलावा उनको इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद जो उनको चाहिए मिल गया, चलो आगे।
मतलब कला में इतना इंटरेस्ट नहीं है।
हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि जो कला है वो सीख रहे हैं, क्यों कला सिखाने वाले हैं, और अभी जैसे आपने कहा एकेडमीज भी है तो सिखा रहे हैं, सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं, लेकिन वो कला के साथ क्या करना वो हम जैसे लोग गाइड कर सकते हैं।
अपनी एकेडमी क्यों नहीं खोले अभी तक? मेरे हिसाब से तो आपको करना ही चाहिए ये सब काम।
हाँ, मैंने एक
सोसाइटी जो बोलते हैं
जी, ऑनलाइन मैंने एक स्टार्ट किया था, लेस्ली लुईस रॉकस्टार्स एकेडमी। तो आपको रॉकस्टार बनना है तो कैसे बनना है?
ओके।
लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक साल मैं अपना टाइम दूंगा और एक साल सब नए आर्टिस्ट को मैं सिखाऊंगा।
क्या हुआ उसका?
उसका मैंने होल्ड कर दिया, क्योंकि कोई बोल रहा है मैं जनवरी में आ सकता हूँ, कोई बोल रहा है अप्रैल में, क्योंकि बॉम्बे में नहीं रहते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम। और मैंने कहा कि मैं एक ही साल निकालूंगा, अभी कोई जून में आएगा तो उसको क्या आधा आधा सिखा नहीं सकता हूँ। तो मैंने उस पर होल्ड, वो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ होल्ड पे रखा है। अब ऑनलाइन जाओगे तो आपको मिलेगा लेस्ली लुईस रॉकस्टार्स एकेडमी, और उसमें सब जो आर्टिस्ट है आशा जी से लेके बाकी के आर्टिस्ट मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो वहां मैंने सोचा एक दो साल में मैं जब टाइम मिलेगा तो स्टार्ट कर लूंगा, जब तक ग्लोबल हिंदी तो मुझे करना ही है मेरे लिए।
रियल वर्ल्ड में भी कोई एकेडमी आप, मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए, आपके जैसे बहुत कम लोग हैं इंडिया में
जी।
आप लोग नहीं अगर करेंगे कंट्रीब्यूट तो कौन आके चलाएगा यहाँ पर?
हाँ, मुझे वही कहते हैं कि अभी आप रिटायर कर लो।
नहीं, नहीं, रिटायर करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप करते जाओ जो कर रहे हैं।
हाँ, तो
लेकिन साथ साथ
एकेडमी शुरू करना, मुझे लगता है कि मेरा वक्त वहाँ देना बहुत जरूरी है।
तो जरूरी और है ही।
अभी मेरा वक्त अपने आप के लिए जो ग्लोबल हिंदी जो कर रहा हूँ, जो ये कोक स्टूडियो के बाद आगे क्या नेक्स्ट जॉनर जो है वो, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक दो साल में वहाँ दूंगा, उसके बाद डेफिनेटली आके एक एकेडमी मुझे लगता है शुरू करना पड़ेगा।
तेरा चेहरा मुझे यूं नजर आए, मुझे बार बार ये तड़पाए। तेरा चेहरा मुझे यूं नजर आए, मुझे बार बार ये तड़पाए। तेरी यादें करती दीवाना, तू शम्मा मैं परवाना। तुझे जलने को मेरा दिल चाहे, तुझे मिलने को मेरा दिल चाहे। यूं ही जलने को मेरा दिल चाहे, तुझे मिलने को मेरा दिल चाहे। तेरा चेहरा मुझे यूं नजर आए, मुझे बार बार ये तड़पाए।
बार बार बार
तेरा चेहरा मुझे यूं नजर आए, मुझे बार बार ये तड़पाए। तेरी यादें करती दीवाना, तू शम्मा मैं परवाना।
जलने को मेरा दिल चाहे, तुझे मिलने को मेरा दिल चाहे। यूं ही जलने को मेरा दिल चाहे, तुझे मिलने को मेरा दिल चाहे।
तुझे ना देखूं तो चैन नहीं, तुझे ना सोचूं कोई रह नहीं।
बार 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 बार
तुझे ना देखूं तो चैन नहीं, तुझे ना सोचूं कोई रह नहीं। तेरी आहट गूंजे कानों में, घुंघरू झलके अरमानों में। मेरा अंग अंग बिखरा जाए, मुझे तंग तंग करता जाए। तेरा चेहरा मुझे यूं नजर आए, मुझे बार बार ये तड़पाए। तेरा चेहरा मुझे यूं नजर आए, मुझे बार बार ये तड़पाए। तेरी यादें करती दीवाना, तू शम्मा
मैं परवाना। जलने को मेरा दिल चाहे, तुझे मिलने को मेरा दिल चाहे। यूं ही जलने को मेरा दिल चाहे, तुझे मिलने को मेरा दिल
शम्मा।
यूं ही जलने को मेरा दिल चाहे, तुझे मिलने को मेरा दिल चाहे।
परवाना
जलने को मेरा दिल चाहे, तुझे मिलने को मेरा दिल चाहे। यूं ही जलने को
अब ये तो हमारी बातें थी
जी,
आप कुछ म्यूजिशियंस को कहना चाहेंगे क्या? आपका कोई मैसेज, आपका कोई गाइडेंस, अपने जितने अपने 3-4 लोग सुनते हैं ये प्रोग्राम को
जी,
इसमें म्यूजिशियंस भी बहुत होंगे
जी,
एस्पायरिंग म्यूजिशियंस भी बहुत होंगे
जी,
आप क्या कहना चाहेंगे उनको?
आजकल कुछ एडवाइस देने से मतलब नहीं है, मुझे लगता है कि सब लोग एडवाइस देते हैं, देने वाले बहुत है और लेने वाले भी बहुत है, लेकिन मैं कहता हूँ जब म्यूजिक सुनते हो तो मतलब अपने कानों से मत सुनो, दिल से सुनो। वो जरूरी बात है कि दिल को जब म्यूजिक लगता है ना तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बात है, उसमें म्यूजिक है, नहीं तो सिर्फ कानों से बैठ सुन के आप एनालाइज करोगे और डिसाइड करोगे ये वो बीट में है, ये राग है, वो क्या करना है, अब सुनो ना, अच्छा लगता है तो म्यूजिक है। तो मेरा कहना है कि जो नई जनरेशन है उनको भी दिल से सुनना वो सीखना पड़ेगा।
हमारे हिसाब से तो आपको एक ब्लॉग शुरू करना चाहिए जो आप कंटिन्यूअस गाइडेंस देते जाएं एस्पायरिंग म्यूजिशियंस को।
कोशिश करूंगा, लेकिन
बहुत जरूरी है,
मुझे क्या अपने आप के लिए टाइम नहीं है। आज आपने मुझे बुलाया, इतने प्यार से बुलाया, तो मैं डेफिनेटली वो भी ऑल इंडिया रेडियो में, तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत साल पहले मुझे चांस था कि मैं अमेरिका जाऊं, वहां सेटल हो जाऊं, वहां म्यूजिक करूं, और आज मुझे लगता है कि मैं इंडिया में क्यों हूं, चार जॉनर ऑर्ली शुरू किया है, फिफ्थ कर रहा हूं, वो किसके लिए? क्योंकि अभी जो न्यू म्यूजिक कर रहा हूं, मुझे जो मैंने सुने हैं म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, जैसे कि हो जिमी हेंड्रिक्स हो या बीटल्स हो या रॉक हो या जैज हो, मुझे वो म्यूजिक हिंदी बोलने वाले आदमी के लिए लेके आना है, वो ग्लोबल हिंदी है, और हो सके मुझे इंडिया में रहना जरूरी है, और इसीलिए आज यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम अचीविंग समथिंग। इंटरव्यूज मैं बहुत करता हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि कुछ बहुत स्पेशल इंटरव्यू है।
ये है लेस्ली लुइस, इनके बारे में तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कि मेरे से ज्यादा या पूरी हिंदुस्तान जानता है इनको। मैं हूँ विकास मित्रसेन, छोटा सा बिजनेसमैन और इनका चाहता स्टूडेंट इन अ सेंस, कि हम इनको सुनते बहुत हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
थैंक यू
ऑल इंडिया रेडियो 100.1 गोल्ड एफएम।
थैंक यू विकास जी।
हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल नसीबी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल, प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी,
मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप कार्यक्रम छूलो आसमान में सुन रहे थे ख्यात गायक एवं संगीतकार श्री लेस्ली लुइस से की गई चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज एवं इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टर सेन की बातचीत। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। सहयोग सृष्टि जाधव एवं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान।